ओम शांति। टुडे आई एम फीलिंग एज आई एम सिटिंग विद माय ओन कॉलीग्स, ओएनजीसी कॉलीग्स। जैसा अभी आपको बताया, ओएनजीसी में मैं था, काफी समय तक वहां पर कार्यरत रहा और अक्सर करके ये 1980s वगैरह की बात है, तो हम महसूस करते थे जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे तो अधिकतर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, उनमें जो भी प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो मोस्टली स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम होते हैं। जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं उसमें स्किल को अपग्रेड करने की बात, तो अक्सर हम सोचा करते थे कि भाई ये केवल स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है और क्या ही अच्छा हो कि इसमें लाइफ ओरिएंटेड प्रोग्राम भी साथ में हो। तो हमारे इंस्टीट्यूशन के एक बहुत ही सीनियर ब्रदर थे, ब्रदर जगदीश जी, तो उनके साथ डिस्कशन हुआ और तब अर्ली 80s में हम लोगों ने डिस्कशन करके और काफी उसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए जो होलिस्टिक नेचर के थे। और होलिस्टिक नेचर माने, क्योंकि जो भी हम सब लोग कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत रहते हैं तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में तो वी आर एम्प्लॉयज, मे बी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, लेकिन फैमिली में जाते हैं, किसी कोई बाप का बेटे होते हैं, किन्हीं बच्चों के बाप माँ बाप होते हैं, कोई वाइफ है हस्बैंड है आदि आदि, तो कई रिलेशनशिप होते हैं। और जैसा आदमी अपनी मेंटल स्टेज लेकर के प्रोफेशन में जाता है तो वो वैसा बिहेव करता है जैसा वो अपने घर से मेंटल स्टेज लेके आता है। अगर बहुत अच्छे मूड में है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा रहता है अपने कॉलीग्स के साथ, और अगर कोई टेंस सिचुएशन में से आया है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका उतना आउटपुट नहीं रहता और टेंस सिचुएशन रहती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि व्यक्ति तो वही है, हर जगह उसका रोल थोड़ा चेंज हो जाता है लेकिन द ह्यूमन बीइंग इज द सेम। इसीलिए एक ऐसे कोर्स का भी वो करा गया, महसूसता की गई, जिनमें कि आदमी का टोटल होलिस्टिक नेचर उसके अंदर आए, फिजिकल मेंटल सोशल आदि आदि। तो आज हम लोग थोड़ा सा उस पर कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोर्स तो काफी लगभग 2-3 दिन का प्रोग्राम होता है, बट वी विल ट्राई एक घंटे में हम लोग कितना इस कोर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइफ मैनेजमेंट स्किल, तो मैनेजमेंट की बात तो जैसे आपको कल भी बताई गई थी, बहुत हम सब मैनेज करना जानते हैं लेकिन अपने को ही मैनेज करना थोड़ा सा उसमें कई बार डिफिकल्टी की महसूसता होती है। तो लाइफ को मैनेज करने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। तो जीवन को लोगों ने बहुत डिफाइन किया है, जैसा जिसकी थिंकिंग रही है वैसा उसने डिफाइन किया है। कोई बड़ा आशावादी व्यक्ति है उसने जीवन को उस दृष्टिकोण से डिफाइन किया है, और कोई निराशावादी है उसने जीवन को उसी दृष्टिकोण से करा है। लेकिन जीवन की एक कंप्लीट डेफिनेशन आ जाए, वो एक प्रयास किया गया है इसके अंदर, दिस फोर लेटर वर्ड LIFE, इसमें फर्स्ट टू लेटर्स दे डिनोट इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के दो मेजर एस्पेक्ट हैं, एक है आंतरिक एस्पेक्ट, एक है बाहरी। तो इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मीन्स लुक इंटरनली, आंतरिक एस्पेक्ट, और दूसरा जीवन का एस्पेक्ट है फॉरवर्डिंग एक्सटर्नली। वी ऑल वॉन्ट टू गो हायर एंड हायर ऑन द लैडर, और जहां पर भी हम हैं, प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस है, ज्यादा पैसा चाहते हैं, पर्क्स, प्रेस्टीज, पावर, नथिंग रॉन्ग। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि बड़ा स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन टेंशन आ जाता है। तो एक जीवन में कैसे हम इन दोनों पहलुओं का एक बैलेंस रखते हुए चलें, वो एक बहुत आवश्यक है। नहीं तो होता क्या है, मुझे कई मोस्ट एडवांस कंट्री USA UK रशिया आदि जाने का मौका मिला, काफी कोर्सेज कंडक्ट करने का भी चांस मिला। मैंने देखा सब कुछ है जीवन में, लग्जरी है, पैसा है, धन दौलत, लेकिन खुशी नहीं है, रिलेशनशिप में संबंधों में हार्मनी नहीं है, कटुता है, और बहुत ऐसी सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि इन दोनों चीज का वो बैलेंस नहीं रख पाया है। बड़ा अच्छा किसी ने कहा ऐसी नहीं है कि हो के मायूस नहीं हो, हो के मायूस नहीं हो, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। और ये दोनों पांव क्या है? एक है मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, एक है स्पिरिचुअल अप्रोच। ये दोनों हमारे, हम सब ने बचपन में खेल खेलना होगा, एक टांग से पत्थर फेंक के, एक टांग से कूद कूद करके, डिफरेंट पार्टीशन होते उसमें जाने का, खेला है ना सबने बचपन में। कितनी देर तक हम खेल सकते हैं? एक टांग से चलेंगे, थोड़ी देर बाद थक जाएंगे। तो आज यही हालत है, हम अक्सर करके एक टांग पर ही अपने जीवन को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो है एस्पेक्ट, एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसी में ही हम समझ रहे हैं कि जीवन की सारी खुशियां हैं, लेकिन ये इंटरनल एस्पेक्ट का महसूसता तब होती है जब हम उसे पहचानते हैं, और जब उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज करके उसे हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने अपने रीति से डिफाइन किया था जिंदगी को, कि जिंदगी है एक सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश बुढ़ापा कॉमा मौत को फुल स्टॉप समझो। पूरा लाइफ उन्होंने एक सेंटेंस में डिफाइन कर दी, सेंटेंस में डैश, जवानी भी तनी हुई डैश, बुढ़ापा कॉमा, बुढ़ापे में कमर भी थोड़ा झुक जाती है, कॉमा जैसा आदमी हो भी जाता है, बट मौत इज फुल स्टॉप। ऐसे हर एक में जिंदगी के ऊपर मोर देन 500 डेफिनेशंस आर अवेलेबल, लेकिन वो सभी डेफिनेशंस जो हैं, ऐसा लगता है कि उसके कम्प्लीशन में कुछ बाकी है, जबकि इसके अंदर मेजर टू एस्पेक्ट आ जाते हैं जीवन में, कैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल एस्पेक्ट। इसको अगर फर्दर एलोबरेट करें थोड़ा सा, तो जीवन को एक, जीवन की तुलना एक मेज से की गई है, टेबल, एक टेबल के अंदर चार टांग होती है, तो जीवन के एक देर आर वेरियस डायमेंशंस, फोर मेजर डायमेंशंस ऑफ लाइफ आर, वन इज फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक पहलू, जो कल सरोज बहन भी बता रहे थे कि इसके अंदर एक भौतिक पहलू होता है, वी ऑल नो अबाउट अवर बॉडी, बीमार पड़ते हैं, दवाई लेते हैं, हेल्थ आदि की बात, तो वी ऑल नो। अनदर एस्पेक्ट इज, दूसरी टांग है मेंटल एस्पेक्ट, आइंस्टीन का भी यहाँ चित्रण किया गया है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, इतना शार्प ब्रेन भगवान ने दिया है, बट हार्डली वी यूज, कितना परसेंट ब्रेन यूज करते हैं हम पूरी लाइफ में? हार्डली 10%, बहुत कम। इवन आइंस्टीन वगैरह का भी, जब उसकी डेथ हुई, उसके ब्रेन को एनालाइज किया गया, तो उसने भी लगभग 12% जैसा ही यूज किया था, बहुत कम। तो इट मीन्स अबाउट 90% ब्रेन रिमेन्स यू सी अनयूज। और यहां पर हम इसीलिए ही ये कोर्सेज का आयोजन कर रहे हैं कि हाउ टू टैप दैट एनर्जी, उस एनर्जी को हम कैसे टैप करके और आगे बढ़े। अभी आपने थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, एक इंडियन गर्ल थी अमेरिका में ना, उसका आईक्यू लेवल आइंस्टीन से भी ज्यादा देखा गया। आइंस्टीन का आईक्यू लेवल 160 था, और 160 के साथ साथ उसका था, और आजकल कौन है कंप्यूटर विजार्ड, कौन माना जाता है आजकल, क्या है, बिल गेट्स, इन दोनों का अबाउट 160 है, लेकिन उस इंडियन गर्ल का 163 आया। पूरा दुनिया में तहलका मचा कि ये कौन है, और जब उसे स्टडी किया गया, देखा गया, तो यही पाया गया कि इट इज पॉसिबल टू एनहेंस फर्दर। कल से आप जब से आए हैं, आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये रिकॉर्ड अगर बचता है तो हम सब लोग साइलेंस में हो जाते हैं, दो तीन मिनट का रिकॉर्ड होता है। इसको हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल। तो जैसे रोड ट्रैफिक होता है, जब क्रॉस रोड आता है चौराहा, एक तरफ का ट्रैफिक रुक जाता है, दूसरी तरफ का ट्रैफिक चलता है, और थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ के ट्रैफिक में रेड लाइट आ जाती है, इधर का येलो और ग्रीन लाइट हो जाती है, तो ये ट्रैफिक चलता है। तो वो ट्रैफिक तो जो होता है मैनुअली कंट्रोल किया जाता है या ऑटोमेटिक। अब ये मेंटल ट्रैफिक जो है, ये एक बड़ा टिपिकल चीज है, सोचता ही रहता है। जैसे दिल की धड़कनें चलती रहती है, आंखें पलक झपकती रहती है, ऐसे ही आज सुबह का शिविर किया होगा ना आपने, उसमें बताया गया होगा मन कितनी फैकल्टी आपको बताई गई आत्मा की। आज शिविर किया आप लोगों ने सुबह, उसमें क्या बताया गया आत्मा के कितनी फैकल्टीज हैं, तीन। क्या क्या? मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन का काम है सोचना। तो ये मन का ट्रैफिक जितना चलता रहेगा और रेस्ट नहीं मिलेगा, मन भी थकान टायर्ड हो जाता है। तो यहाँ बीच बीच में 1:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30, 7:30, लाइक दैट, ऐसे 5-7 टाइम फिक्स किए हैं, व्हेन वी आर वेरी मच बिजी, पीक ट्रैफिक आवर पर जब थॉट प्रोसेस चल रहा है, उस वक्त ये गीत बजता है, सब रोक करके हम अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं। जो ट्रैफिक कोई भी बात सोच रहा है, दुनिया की बात, अपने प्रोफेशन की, घर की, परिवार की, मार्केट की, एंटरटेनमेंट की, कुछ भी, उसे रोक करके, उसे डाइवर्ट करके थोड़ा स्पिरिचुअल डायमेंशन दे देते हैं, फिर से वो रिचार्ज हो जाता है 3 मिनट में। उसके बाद फिर 2-4-5 घंटे के लिए इट बिकम्स चार्ज पावरफुल। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल का आप अभ्यास करेंगे तो ये एक बड़ा ही अपने मुताबिक चेंज कर लीजिए। आई एम रिमाइंडेड ऑफ यहाँ पर जब होता है 10:30 बजे, तो एक्चुअली व्हेन आई वाज विद ONGC, वो हमारा मीटिंग का टाइम होता था, और उस समय सारे डिपार्टमेंटल हेड्स की RD के साथ मीटिंग हुआ करती थी, तो नेचुरली उस समय प्रैक्टिस करना हमारे लिए डिफिकल्ट था। तो अकॉर्डिंगली एज पर माई कन्वीनियंस आई चेंज इट टू 11:30। तो उससे क्या होता है, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप फिक्स जरूर कोई ना कोई टाइम 2-3 मिनट का कर लीजिए, जिससे कि आप देखेंगे जैसे चाय का एक कप पी के या स्मोकिंग से, जिससे लोग फ्रेश हो जाते हैं, ये आपको कम्प्लीटली रिचार्ज कर देगा। जस्ट 2 मिनट के लिए आप साइलेंस में अपने मेंटल ट्रैफिक को रोक दीजिए, आप देखेंगे इतना रिचार्ज हो गया, उसकी क्रिएटिविटी पावर अगेन इट कम्स बैक एंड उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़ा यूजफुल चीज है। तो हम बात कर रहे थे वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ की, तो एक है फिजिकल डायमेंशन, एक है ये मेंटल डायमेंशन, तीसरी है एक प्रोफेशनल और सोशल डायमेंशन, जो है सोशली वी ऑल नो, सामाजिक रीति से भाई कैसे पड़ोसियों के साथ, परिवार, माता पिता, भाई बहन के साथ, और प्रोफेशन में हमारा मेजर टाइम आज हमारा प्रोफेशन में गुजरता है। सुबह से ही उठ के बस तैयार होके प्रोफेशन में जाने की रहती है, सारा दिन भर वहां रहते हैं, तो इसीलिए ये एक मेजर एस्पेक्ट है। तो ये तीन टांग आप देख रहे हैं, कोई भी मेज की किसी भी एंगल से देखेंगे, तीन टांग तो पूरा दिखाई देंगी, लेकिन चौथी टांग छोटी दिखाई देगी। एक्चुअली छोटी होती नहीं है, छोटी दिखती है, एंड दैट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ लाइफ। और उसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि चलो जब रिटायर हो जाएंगे, जब बच्चों की शादी वादी हो जाएगी, जब कोई काम वाम नहीं होगा, तब हम आराम से भगवान को याद वगैरह करेंगे। हम स्पिरिचुअल डायमेंशन का ये मतलब समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन डजंट मीन द रिलीजियस डायमेंशन। वो रिलीजियस एस्पेक्ट अलग है, स्पिरिचुअल मीन्स वैल्यू एंड एथिकल ओरिएंटेड लाइफ। और वैल्यू ओरिएंटेशन से क्या होता है, जब ये होता है तो जीवन में जब कभी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, इस डायमेंशन को हम थोड़ा यूटिलाइज करते हैं, अगेन वी बिकम स्ट्रेस फ्री। और इस कारण से ये जरूरी है, जीवन रूपी मेज हिलती डुलती तब है, कब हिलती है, चार टांग है और मेज कब हिलेगी ज्यादा, जब चारों टांगों में से कोई एक दो टांग छोटी या बड़ी होगी वो हिलेगी। इसी तरीके से ये स्पिरिचुअल डायमेंशन को हम अपने लेटर स्टेजेस इन लाइफ के लिए छोड़ देते हैं और इस कारण से क्या होता है, ये डायमेंशन छोटी रह जाती है और मेज, जीवन रूपी मेज डगमग होती रहती है। कोई भी प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा ऐसा आई कि पेपर आया लाइफ में, चैलेंजिंग सिचुएशन आई, बस स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। कहीं पर हमारे अनुकूल चीज नहीं मिली, हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो आवश्यकता यह है कि इस डायमेंशन ऑफ लाइफ चारों को प्रॉपर रीति से समझा जाए और चारों का अगर थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रख के चला जाएगा तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे। आज भी आपको बताया गया होगा, लेकिन पहले इससे ये जानना जरूरी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। आज तो आपने सुना होगा ना, क्या फर्क है माइंड और ब्रेन में? डिफरेंस अक्सर करके हम तीन चीजों को मिला देते हैं, माइंड, ब्रेन एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि और मस्तिष्क, इन तीन चीजों को मिला दिया करते हैं। लेकिन ये तीनों ही अलग अलग हैं। क्या अलग हैं? गौर से देखिएगा। एक तो ये शरीर, आज तो आपने समझा ही होगा हम कौन हैं, शरीर है या आत्मा है? क्या है? खाली आत्मा भी क्या करेगी अगर शरीर ही नहीं होगा तो? इस शरीर के अंदर हम चैतन्य आत्मा है, या बेटर यही होगा कि मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया है। तो ये बॉडी, और बॉडी के दो जो मेन फैकल्टीज हैं वो है एक हार्ट और एक है ब्रेन। ये फिजिकल चीज है, डॉक्टर्स ने देखा है इसको, पिक्चराइज किया है, ऑपरेशन किए हैं आदि आदि, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं रहती है। हार्ट एंड ब्रेन ये है। लेकिन एक कॉन्शियसनेस जो है, जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस जो है उसकी जो दो मेजर फैकल्टीज हैं वो एक है माइंड और दूसरी इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म है। इसीलिए जब बॉडी जो है ना, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा निकल जाती है, तो क्या होता है, हार्ट भी फिजिकली रहता है, ब्रेन फिजिकली रहता है, लेकिन वर्क नहीं करता। तो ये ब्रेन एंड हार्ट दे आर द हार्डवेयर, जबकि माइंड एंड इंटेलेक्ट दे आर द सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वर्क ही तब करेगा जब हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर हो। और इसीलिए ये मन जो है, मन के ही लिए कहा गया है बहुत सारी बातें, और जो हम देखेंगे, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब बातें जो कही गई हैं, मन के हारे हार है मन के जीत। तो ये मन जो है ये वास्तव में एक प्रोग्रामर है। तो मन और बुद्धि, तो ये दोनों तीनों चीज अलग समझ ही लीजिए कि मन एक है, मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय देना, और ब्रेन जो है, जब मन ने सोच लिया, बुद्धि ने निर्णय दिया, तो ब्रेन के थ्रू पूरे के पूरे शरीर के अंदर अकॉर्डिंगली मैसेज जाता है और हमारी कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। और ये अब होगा, जैसे हम कहते हैं भाई ये पेन है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, मेरा पेन, मेरा पेन माने आई पजस दिस पेन, मैं अलग हूं, पेन अलग है। इसी तरह कहते हैं भाई चश्मा है, मेरा चश्मा, यानी मैं अलग हूं, ये चश्मा अलग है, दिस इज माई पजेशन। तो कोई भी चीज बोली जाती है, मेरा रुमाल, हैंकी, ये मेरा रुमाल, रुमाल अलग है, मैं अलग हूं। इसी तरीके से जब हम कहते हैं भाई मेरा कान, मेरी आंख, मेरा मुंह, ऐसा बोला जाता है, मेरा हाथ, तो ये क्या हुआ, दिस इज माई पजेशन, दिस बॉडी इज माई पजेशन, आई एम नॉट द बॉडी बट बॉडी इज माई पजेशन। तो ये तो डिटेल आपने आज सुबह शायद सुनी भी होगी, फर्दर आप शिविर में और सुनेंगे। लेकिन भाव क्या है इसका बोलने का, कि पजस करने वाली मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। तो इस जब इस स्मृति में इस एटीट्यूड में रहते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति अकॉर्डिंगली बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लीन एंड क्लियर हो जाती है. ही इज एबल टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम एंड अकॉर्डिंगली अचीव सक्सेस इन लाइफ. जीवन में सफलता प्राप्त करता है, उसे जीवन में खुशी का एहसास होता है. और ये कब होता है, साथ साथ कि ये जो माइंड है ना हमारा, द माइंड एक्ट्स लाइक ए प्रोग्रामर. माइंड कैसे ना? जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर को जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम करता है. तो ऐसे ही माइंड हमारा प्रोग्रामर है. माइंड इज ए प्रोग्रामर. तो कंप्यूटर क्या है, एंड जैसे कंप्यूटर होता है और ऑपरेटर जो होता है वो कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है, तो प्रोग्रामर अलग है कंप्यूटर अलग है. ऐसे माइंड प्रोग्रामर है और ब्रेन जो है फिजिकल थिंग दैट इज ए कंप्यूटर. तो माइंड जो है ब्रेन को प्रोग्रामिंग करता है, और जब ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है तो क्या होता है, देन जैसे प्रोग्रामिंग कर देते हैं कंप्यूटर को तो रोबोट के थ्रू हम काम ले सकते हैं. ऐसे ही ये शरीर जो है ये हमारा रोबोट की तरह है, और जब माइंड ब्रेन को प्रोग्रामिंग कर देता है तो ये शरीर रूपी रोबोट के द्वारा हम कर्म करते हैं. लेकिन प्रोग्रामर की ही इम्पोर्टेंस है, तो ये प्रोग्रामर है माइंड. इसीलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन ऑन द एक्चुअल फ्रंट. वार इज फर्स्ट फॉट इन माइंड देन ऑन द बैटल फील्ड. तो इस तरीके से हर चीज माइंड में. आप भी यहां बैठे हैं, आपको दो चार महीने पहले कभी बताया गया होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम माउंट आबू में है, आप लोग ये नॉमिनेट किए गए अलग अलग, तो यहां आने का आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया. तो पहले मन ने सोचा, इन्फॉर्मेशन मन को मिली, फिर बुद्धि ने निर्णय दिया कि हाँ चलो वहां चलते हैं, फिर ये बॉडी रोबोट के द्वारा अकॉर्डिंगली टिकट वगैरह कराई, नेसेसरी प्रिपरेशन, और आप यहां पर आ गए. लेकिन द न्यूक्लियस द बेसिक वन इज माइंड. तो माइंड को अगर हम किसी तरह मैनेज करना सीख लें तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज मैनेज हो जाती है. इसीलिए माइंड इज ए प्रोग्रामर माइंड. और इसके साथ साथ जब माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है तो कैसे माइंड का प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा रहेगा. ह्यूमन माइंड इज यू सी लाइक ए पैराशूट. हाँ, प्लेन से जब कूदते हैं पैराशूट होता है, खुल जाता है तो आदमी कंफर्टेबली सेफली नीचे डिसेंड करता है. ऐसे ही माइंड को हम खुला रखें. माइंड रूपी पैराशूट अगर खुला होगा तो एवरीथिंग विल बी नाइस. तो मन को हमेशा कभी किसी पूर्वाग्रह में बांध न दें. अक्सर करके क्या होता है, हम किसी न किसी पूर्वाग्रह में ना अपने को बांध लेते हैं, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स में. किसी के प्रति हमारी बहुत लाइकिंग होती है, किसी के प्रति डिसलाइकिंग होती है. दोनों ही हानिकारक हैं, क्योंकि दोनों ही जगह ना हमारी बुद्धि जब जाती है तो दोनों ही हमें नुकसान देने वाले हो जाते हैं. या तो डिसलाइकिंग होगी तो घृणा ईर्ष्या द्वेष वो सब जनरेट होगा, या जहां लाइकिंग होगी वहां पर भाई भतीजावाद फेवरेटिज्म नेपोटिज्म वो सब होगा, वो भी लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदेह हो जाता है. इसीलिए माइंड को प्रोग्रामिंग करना, कीप योर माइंड ऑलवेज ओपन. और जितना माइंड ओपन होगा उतना राइट डिसीजन एट राइट टाइम ऑलवेज ये चलता रहेगा. तो मन के लिए जो कहा जाता है ना, तो वो मन जीवन में ये एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है. इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भी ना जो कहा है, और गीता में भी यही कह दिया है, ज्ञान सुना के मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव. क्यों? क्योंकि मन को अगर हम अपने कंट्रोल में एक बार कर लेते हैं तो बाकी चीजें सब ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में आती जाती हैं। तो इसके साथ साथ है ये सब डिपेंड करता है हमारे मन ठीक हो गया, बोलचाल ठीक हो गई। इसका मतलब मन ठीक होना माने हमारा दृष्टिकोण एटीट्यूड वो बहुत ठीक हो। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, दृष्टिकोण हमारा कैसा है। कहते तो है भाई दृष्टिकोण पॉजिटिव हो लेकिन कैसे हो। हाँ ये दृष्टिकोण देख रहे हैं, ये आप लोगों को ये दिख रहा है क्या थोड़ा हा? या फीबल हल्का दिख रहा है पीछे भाई, इधर कोई बैठा है क्या हा? ये वाली लाइट बंद हो सकती है, ये ऊपर वाली देखो जरा, अगर ये बंद हो जाए तो हमारा दृष्टिकोण कैसा। इसके लिए बड़ा सिंपल सा उदाहरण देते हैं, आधा हाफ ग्लास फुल हाफ एम्प्टी सुना होगा आपने। तो अगर हम इसका भाव क्या है हमारे जीवन में क्या है, कितना फिल्ड पार्ट है, अगर हम उसे देखते हैं ना तो ये हमारे जीवन को एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और अगर हम एम्प्टी पार्ट क्या नहीं है वो देखते रहते हैं वो दूसरा दृष्टिकोण देता है। हाँ फुल पार्ट देखेंगे, मेरे पास ये भी है ये है, चलो भगवान का शुक्रिया थैंक्स गॉड ये है, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड को जैसे जन्म देता है। और अगर एम्प्टी पार्ट को है बड़ी चीज है, अभी मोदी जी है ना गुजरात के चीफ मिनिस्टर अवर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, उन्होंने एक तीसरा दृष्टिकोण भी दिया था याद है ना, दिल्ली में लेक्चर किया था उन्होंने, तो उन्होंने बोला ये हाफ फुल हाफ एम्प्टी ये भी कहना गलत है। क्या है फिर, इट इज कम्प्लीट फुल, हाफ फुल ये लिक्विड हाफ नॉट एम्प्टी बट फिल्ड बाय विद एयर। तो अगर हमारा दृष्टिकोण यही हो जाएगा, कोई खाली नहीं है दृष्टिकोण हमारा, अगर मेरे पास ये भी है ये है ये है, तो हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड मोर ओवर आदमी को आगे तो बढ़ना ही चाहिए, कंपटीशन लाइफ में हो। लेकिन होता क्या है कि जब हम दूसरे का ये देखते हैं उसके पास तो ये भाई मेरे पड़ोसी पर तो ना उसका तो बंगला बन गया, मेरे पास तो फ्लैट है, उसका तो बड़ी लग्जूरियस कार आ गई, मेरे पास तो स्कूटर ही है, लाइक दैट। जब हम तुलना इस दृष्टिकोण से करते हैं तो घृणा या ईर्ष्या की भावना आने लगती है, स्ट्रेस पैदा होता है, टेंशन, ये नहीं है ये नहीं है, और उसके कारण से जीवन में काफी अभाव महसूस होते चले जाते हैं। बहुत चीजें हैं लेकिन दूसरे की तुलना में पांच उंगलियां तो हाथ में भी बराबर नहीं है, छोटी बड़ी है, तो ये तो प्रकृति का नियम है सब अलग अलग होंगे। तो उसे उस दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए हमारा दृष्टिकोण। मुझे याद आती है एक बात बहनों ने बताई हो शायद आपको, एक प्रोफेसर साहब लेक्चर कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट बैठे हुए थे लेक्चर कर रहे थे भाई शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं, और लेक्चर करके उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करने का प्रयास किया। उन्होंने एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में अल्कोहल ली शराब ली, पहले पानी लिया एक गिलास में, कांच का गिलास था दिख रहा था पानी, प्रोफेसर साहब ने एक छोटा सा कीड़ा लिया पानी में डाला, कीड़ा अंदर गया तैरने लगा तैरता रहा, थोड़ी देर बाद प्रोफेसर साहब ने निकाल के उसे मेज पर रख दिया, इट वॉज हेल एंड हेल्दी, आराम से तंदुरुस्त था चलने लगा। फिर प्रोफेसर साहब ने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जिस ग्लास में एल्कोहल था शराब थी, कीड़े को इसमें डाला, हाँ कीड़ा अंदर गया और थोड़ा जरा झूमने लगा, आफ्टर ऑल वाइन थी शराब थी, बड़े बड़े झूम जाते हैं, ये तो छोटा सा कीड़ा ही था, उसके में भी पेट में एक दो बूंद चली गई होगी, झूमने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम वो शांत हो गया, मर गया। प्रोफेसर साहब ने उसे हिलाया, देर वॉज नो लाइफ, कीड़ा मर गया, और मरा ही नहीं उसके शरीर घुलने लगा, उसका शरीर शराब में इतना तेज शराब का इफेक्ट था, और जब उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा तो प्रोफेसर साहब ने पूछा, व्हाट द मैसेज दिस एक्सपेरिमेंट कन्वेज, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो स्टूडेंट सोचने लगे और वेरी राइटली एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा करके खड़ा किया हाथ, हाँ हाँ बताओ सर, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है यदि हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, शराब पियेंगे, हमारे पेट के सब कीड़े वीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। तो ये थिंकिंग जो है, एक ही थिंकिंग किसी के लिए पॉजिटिव किसी के लिए नेगेटिव, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा है उस पर सारा निर्भर करता है। तो ये दृष्टिकोण, इसको एक ऐसा दिशा देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, भाई चांद की भी तुलना की जाती है, बड़ा भाई बहुत अच्छा, सलाखों के एक जेल में कैदी बंद है दो, बस देख रहे हैं चांदनी रात है, तो बस एक ने चांदनी रात में देखा और उसे कीचड़ में, कीचड़ है नीचे, कीचड़ में भी चांद दिखाई दिया। दूसरे को क्या दिखाई दिया, चांद देखा है, चांद में भी दाग दिखाई दिया। चांद में भी कुछ होता है, चंदा मामा बोलते हैं, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे ना, कोई बुढ़िया चरखा कात रही है या अलग अलग स्टोरीज वगैरह, तो वो कुछ जैसे स्पॉट्स हैं। तो हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढते, कीचड़ में भी चांद या चांद के अंदर भी दाग वो दे। तो जैसा हमारा जीवन में दृष्टिकोण होता है वो ही हमें खुशी प्रदान करता है दुख। इसी ने बड़ा अच्छा किसी ने ना हैप्पीनेस को भी डिफाइन किया है, फार्मूला होता है, आप में से भी कई टेक्निकल होंगे, कोई भी चीज होती है हैप्पीनेस का कोई फार्मूला है, हम सब चाहते तो हैं जीवन में खुशी हो, खुशी का कोई फार्मूला है आपके पास? बहुत सिंपल फार्मूला है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेशन, यानी खुशी इज इक्वल टू अचीवमेंट माने प्राप्ति डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा। बस जब हमारे अचीवमेंट्स, मानो मेरा हुआ कि मेरे बच्चे का एडमिशन मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, हो गया भाई, अचीवमेंट हुआ, खुशी हो जाती है। स्टूडेंट होता है उसका है भाई मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ जाएं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जाऊं, हो गया, खुशी हो गई। तो अचीवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, ठीक, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्सपेक्टेशन। बस दिस इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मोर द एक्सपेक्टेशन हैप्पीनेस कितनी होगी, लेसर द हैप्पीनेस। हमारी जो दूसरों से अपेक्षाएं होती है ना, और अपेक्षाएं किसी की भी जीवन में पूरी नहीं होती है, फुलफिल 100% नहीं होती है, इसलिए अपेक्षाएं अगर हम जितनी कम से कम रखेंगे, हस्बैंड की वाइफ की से, वाइफ की हस्बैंड से, बाप की बेटे से, बेटे की पिता से, भाई भाई की, एक्सपेक्टेशन हम कम रखें, हाँ हो जाती है, इट इज बोनस फुलफिल्ड, लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत है किसी से और वो एक्सपेक्टेशन संपूर्ण नहीं होती है, हमारा हैप्पीनेस लेवल एकदम डाउन हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है। तो इसीलिए जीवन में एक तो शब्द है ये अपेक्षा, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स में ये एक है अपेक्षा और दूसरी है उपेक्षा, ये दोनों शब्द ही ना जीवन को दुख प्रदान कर सकते हैं। उपेक्षा, हम किसी की दूसरे की उपेक्षा करते हैं, मानो इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कोई लेसर ह्यूमन बीइंग आया, हमने उसकी उपेक्षा की, देखा नहीं, उससे बात नहीं करी। तो उपेक्षा जब हम दूसरे की करते हैं इससे दूसरे को दुख होता है, और अगर हम अपेक्षा रखते हैं दूसरे से वो हमारी फुलफिल नहीं होती है, उससे हमें दुख होता है। इन दो शब्दों से, अपेक्षा और उपेक्षा, इन दो शब्दों से हम अधिकतर जितना अगर सावधान बच करके चलेंगे उतना जीवन में हमारे ज्यादा प्रसन्नता खुशी आनंद जीवन के अंदर ये होता रहेगा। इसीलिए लाइफ के अंदर एक ये हम अपना बना लें और ये हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में बहुत मदद देगा। कहते तो है पॉजिटिव एटीट्यूड हो, लेकिन कैसे हो? एडवर्स सिचुएशन में रह रहे हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, सास बहू साथ साथ है, दोनों की ओपिनियन डिफरेंट है, लाइक दैट, ऐसे में कैसे हो सब? और ये तभी होगा जब हम दूसरों को अपने एक ऐसे पॉजिटिव नजरिया से देखेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, कौन सा? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन हम इस सिद्धांत पर चलते नहीं है, कहने तक है, और हर एक को हम अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, दूसरे को जैसा मैं सोचूं वैसा ये करे, सास बहू को, बहू सास को, पिता बेटे को, बेटा पिता को, भाई भाई को, ऑफिस के अंदर बॉस जूनियर को, और लाइक वाइज। और जब हम दूसरे को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं ना, और सारी दुनिया तो ऐसे अनुरूप चल नहीं सकती है, तो हमें दुख की महसूसता होती है। और इस कारण से आवश्यकता इस बात की है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हाँ, मेरा फर्ज है, बेटा है, मेरा फर्ज है उसे गाइड करना, सारे इनपुट देना, वो मेरा ड्यूटी है। कोई सब्जेक्ट में वीक है, ट्यूशन देना आदि आदि, दैट इज माई ड्यूटी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर एज पर एक्सपेक्टेशन अगर रिजल्ट नहीं आ रही है, आई मस्ट एनहेंस माई इनपुट्स, अपने वो बढ़ाएं। लेकिन उसकी वजह से अगर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एंड अगर जीवन में कोई डिप्रेशन या ये आता है, ये नहीं होना चाहिए। और ये तब होगा जीवन में जब हमारा जीवन के प्रति नजरिया, दृष्टिकोण जो होगा वो ऐसा होगा जो पॉजिटिव। कल भी एक बता रहे थे ना, कल एक बात सुनाई थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी है, एक दो लाइन की शेर जैसा सुनाया था ना, याद है किसी को? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, कौन सी भूल करी? हाँ, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्रॉब्लम हमारी होती है, लेकिन हम दूसरे को दोष दे देते हैं। कल सरोज बहन भी बता रहे थे ना, सिचुएशन को ब्लेम कर दिया, बॉस को, सबॉर्डिनेट को, किन्हीं को ब्लेम जो कर देते हैं, ब्लेम गेम, ये जो है ना, ये जीवन में कष्ट प्रदान करता है। तो इसीलिए हमें देखना है, डिपेंड ये करता है कि हमारा रिएक्शन कैसा है। सिचुएशन एक ही होती है, दो आदमी हैं, दोनों के रिएक्शन अलग अलग हैं, अकॉर्डिंगली दोनों के रिएक्शन अलग होने से रिस्पॉन्ड लाइफ में अलग अलग होता है। तो आवश्यकता इस बात की हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या था, एक्ट बट डोंट रिएक्ट। हम इमीडिएटली जो रिएक्ट कर देते हैं वो रिएक्ट होना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये लाइफ मैनेजमेंट की सिचुएशन, चारों एस्पेक्ट जो आपको बताए जा रहे हैं, ये कुछ एस्पेक्ट हैं एटीट्यूड का। चारों डायमेंशंस लाइफ की वो अलग अलग बताई गई, दो मेजर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और अब ये हम देखते चलते हैं कैसे हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें। थ्री एस्पेक्ट फॉर कीपिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड या थिंकिंग, ये है मन की बात है ना, ये तो मन में विचार आते हैं। आज आपको बताया होगा ना, कितने विचार आते हैं मन में, कुछ थोड़ा सा बताया गया होगा। मन का काम है सोचना, हाँ, तो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। नॉर्मल केस में हमारे मन में कितने विचार आते हैं? एवरी टू सेकंड में एक विचार, हर दो सेकंड में एक विचार आ जाता है। यानी एक मिनट में कितने विचार हो गए? करीब 30 थॉट। दिस इज एवरेज, माइंड कैन हैंडल, ऑल राइट, माइंड इतना शार्पनेस बनाई है भगवान ने, तो ये ओके। तो इतने विचार होते हम इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कोई लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आई, अभी आप यहां बैठे हैं, यू आर एंजॉइंग द एनवायरनमेंट, हिल स्टेशन, यहां पर आए हैं, ऑल राइट फाइन, सडनली आपका कोई मोबाइल खड़खड़ाता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई आपका सच एंड सच नियर एंड डियर उसका एक्सीडेंट हो गया, ही इज वेरी सीरियस इन सच एंड सच हॉस्पिटल, डोंट नो व्हाट विल हैपन इज लाइक दैट। तो माइंड के अंदर ना सडनली विचारों की रफ्तार तेज हो जाती है, संख्या तेज हो जाएगी, बहुत विचार आने लगेंगे नेचुरली, क्या हुआ, कहाँ है हॉस्पिटल में, क्या सिचुएशन होगी, क्या मैं जाऊं वापस, क्या कर सकता हूं, आदि आदि। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत बढ़ जाती है, और ये क्वांटिटी ऑफ थॉट जब बढ़ती है तो क्या होता है, बॉडी पर इसका रिफ्लेक्शन आता है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा, शुगर लेवल उस पर फर्क पड़ेगा, काफी चीजें एकदम सडनली बॉडी डिस ईज, ईज में है बॉडी लेकिन डिस ईज डिजीज बीमारी बॉडी डिसीज होने लगती है। क्या करें ऐसे में, क्वांटिटी ऑफ थॉट जब बढ़ती है तो दूसरा एस्पेक्ट इसका है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। इन जनरल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, कोई चीज होती है ना क्वांटिटी बढ़ाएंगे क्वालिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम करेंगे क्वालिटी बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर यही सिखाया जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन आए आप अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट को रेज करो, एनहेंस करो, जो आपको थोड़ा लाल लाइट में करके बताई भी जाती है योग में, भाई शुद्ध, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आप अपनी ओरिजिनल स्टेज में ना जो ऑटो सजेशन देते हैं, पुराने जमाने में भी सुना करते थे ना कि जब सेना और राजा युद्ध करने जाते थे तो उनको और हाँ शक्ति प्रदान करने के लिए क्या किया करते थे, वो भाट लोग होते थे, वो बड़े नगाड़े वगाड़े बजा के और उनके पूर्वजों का इतिहास याद दिलाते थे, अरे तुम्हारे दादा ऐसे थे, परदादा, उसने उसको हराया, ये करा वो करा, तो वो अपनी पूरी पुरानी सुन करके ना वो अपने उसी शक्ति में आने लगते थे। तो बाहर से किसी को कहने की जरूरत नहीं, हम अपने कोई ऑटो सजेशन दें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली चेतन सत्ता हूं। और जैसे ही जितने जितने आपका लेवल ऑफ थॉट्स हाई होता जाता है, क्वालिटी ऑफ थॉट, तो क्वांटिटी ऑफ थॉट ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, कभी ऐसा हो आप अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट भी ना आप बांध के अपने आप ही देख सकते हैं, और जब क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत चल रही है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम है, कहीं किसी रिलेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन से, बीपी नापा आपने, हमने तो कई बार किया है, और यहां पर देखा कि क्वांटिटी ऑफ थॉट जब ज्यादा हाई हो जाती है बीपी हाई हो जाता है। फिर यहां बताया जाता है हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल वगैरह जो यहां पर है उसमें मेडिटेशन को भी इंक्लूड किया है, मेडिकेशन दवाई के साथ साथ। अब इतना ये सोचिए, ऐसा सोचिए, बस 15-20 मिनट ही वो अपना थॉट लेवल को कंट्रोल में जब लाते हैं ना, बाय इटसेल्फ बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजेशन उधर ही की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि इट इज माइंड, ये फंक्शन है, और जितना थॉट जो है ना हमारे ब्रेन में ही माइंड में ही जनरेट होते हैं, ब्रेन के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन पंप होता है हार्ट के थ्रू, और जितना हमारा थॉट लेवल कंट्रोल में होता जाएगा ब्लड का सर्कुलेशन भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता जाता है और इट कम्स टू नॉर्मल। सेकेंड थिंग इज द क्वालिटी ऑफ थॉट, एंड द थर्ड थिंग इज डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा वो कैसे हो। तो डायरेक्शन ऑफ थॉट्स जो है इसको बड़ा सिंपल, बचपन में हम सब ने शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा, सूरज के सामने वो एक कॉन्वेक्स लेंस रख लेते हैं, तो वैसे सूरज का प्रकाश है, हम सब लोग टॉलरेट कर लेते हैं सूरज की एनर्जी, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब एक लेंस रख लिया और लेंस से किरणें फोकस होती है तो क्या होता है, नीचे हाँ जो भी रखा है वो जलने लगता है। अब वही सूरज है, सब ऑब्जेक्ट वही है सब कुछ, लेकिन उस उन रेस को हमने कन्वर्ज कर लिया, एक जगह फोकस कर लिया, उसमें बहुत शक्ति आ गई। इसी तरीके से बस ये जो है ना थॉट्स भी, नॉर्मली क्या होता है हमारे थॉट्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अभी हमारे थॉट्स भाई कोई ट्रेनिंग की तरफ है, कभी घर की तरफ चले जाएंगे जहां से हम आए हैं, घर की कोई बात याद आ गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट की बात याद आ गई, कोई एंटरटेनमेंट की बात याद आ गई, कोई ट्रेवल की बात याद आ गई, तो हमारे थॉट्स जो डाइवर्ट हो जाते हैं तो एनर्जी भी हमारी सारी डिवाइड हो जाती है। तो मेडिटेशन इज नथिंग बट सिंपली इट वर्क्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, कि ये आपके थॉट्स एनर्जी को एक जगह कन्वर्ज करने का काम करती है, और जिससे कि सारे थॉट्स एट ए टाइम एक जगह अगर होंगे ना, इट जनरेट सो मच एनर्जी, एकदम इट प्रोवाइड्स यू कंप्लीट सक्सेस इन लाइफ, क्योंकि जहां कंसंट्रेशन इज की टू सक्सेस ये कहा जाता है। इसलिए ये डायरेक्शन ऑफ थॉट्स मेडिटेशन में यहां बस आपको यही सिखाया जाएगा कैसे हम राइट डायरेक्शन राइट टाइम पर और ये ले और ये हाँ। तो इसीलिए जितना जितना ये डायरेक्शन भी राइट होगी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ थॉट यही कंट्रोल करना, इसी का नाम ही मेडिटेशन है, योग है। योग के लिए कोई आसन प्राणायाम और उनकी जरूरत नहीं, मेंटल योग राजयोग। लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं। अभी ट्रैफिक कंट्रोल किया ना, तो बैठे हुए थे, कार ड्राइव कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये हो सकता है। इट इज द फंक्शन ऑफ माइंड। और जितना जितना ये होता है तो जैसा माइंड के अंदर विचार होते हैं वैसा ही वाणी से निकलते हैं, मन वचन और कर्म बोला जाता है ना, विचार। तो जितना मन के अंदर जैसे संकल्प पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव वाणी निकलेगी। मन के अंदर किसी के लिए क्रोध के विचार अगर आ रहे हैं, उसे कंट्रोल नहीं किया, जैसे वो व्यक्ति आएगा या सिचुएशन आएगी इमीडिएटली क्रोध के विचार प्रत्यक्ष हो जाएंगे, गुस्सा तेज वॉल्यूम हर चीज। तो जैसा मन के अंदर होता है वैसा वाणी के अंदर होता है। इसीलिए कहा गया है जो लिखा है ना, साइलेंस इज गोल्डन स्पीच इज सिल्वर। ये है जैसे मछली मारने के लिए आपने कुछ हाथ खड़ा किया, वी विल डिस्कस विद द क्वेश्चंस काइंडली। तो जैसे मछली होती है ना कांटे में कब फंसती है, मछली मारने के लिए किसी ने कभी मछली पकड़ी है, कभी ट्रायल किया हो हाथ खड़ा करें, करा होगा ओके। जैसे ही मछली मुंह खोलती है कांटे में उसका प्रे लगा हुआ होता है खाना, और मुंह खोला फंस जाती है, कांटा उसके जबड़े को पकड़ लेता है। बस ऐसे ही हम लोग भी जब मुंह खोलते हैं ना तो मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वाणी, हमारा अवर स्पीच। इसीलिए हमारे कहीं लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है विद्वान लोगों ने कि कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। जवान में ना हड्डी ना कितनी फ्लेक्सिबल है हड्डी, लेकिन भगवान ने तो ये सोच के हड्डी नहीं बनाई कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो जवान से मुंह से मीठा बोलेगा आदमी, प्रेम से बोलेगा, सबके साथ शांति से रहेगा। लेकिन हड्डी नहीं भी है तो मनुष्य ने कहा कोई बात नहीं भगवान जी, अब तो आपने मुझे बनाई दिया, दुनिया में भेज ही दिया, मैं बिना इसके ही हड्डी के ही काम निकाल लूंगा। तो हड्डी नहीं है लेकिन कितनी कटुता पैदा कर देता है। किसी को ही कहा गया कि टंग जवान है ना, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। कटु वचन बोला, लड़ाई झगड़ा करा दिया, एनिमिटी करा दी, दुश्मनी हो गई, बहुतों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं है, माइंड ने जो सोचा मुंह के द्वारा वो निकलता है। तो इसीलिए मन के अंदर सोचने की अगर हमारा दृष्टिकोण और वो पॉजिटिव होगा, ये सब जीवन जीने की कलाएं, लाइफ मैनेजमेंट की स्किल आपको ये टिप्स के रूप में साधारण रूप में बताई जा रही हैं, काफी चीज हमें मालूम है, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन में ये मैनेजिंग द माइंड ये एक बहुत बड़ी वाइटल चीज है। तो बस ये जवान जो है ना, इसको मुख से मीठा बोलने का। मुझे याद आता है एक थोड़ा हस्बैंड वाइफ में थोड़ा कहा सुनी हो रही थी, नॉर्मली परिवार के अंदर हो जाती है, वाइफ बोले जा रही थी, हस्बैंड सुने जा रहा था। तो बार जी हाँ, ये तो आप उनसे पूछिएगा, मैं दूसरे के ब्याह पर कैसे बता सकता हूँ। एक जनरल नॉर्मल बात, क्योंकि आप सब परिवार वाले हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना स्वाभाविक है, किचन में भी दो बर्तन होंगे थोड़ा खटकेंगे। तो हस्बैंड वाइफ में थोड़ी कहा सुनी हो रही थी, वाइफ चुप था, चुप मतलब हस्बैंड चुप था, वाइफ बोले जा रही थी, वाइफ का गुस्सा और बढ़ रहा था। तो मैं ये बोल रही हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते, लेकिन वो चुप था। ऐसे में जब बहुत गुस्सा आता है, माइंड अपना ठीक काम नहीं करता है। वाइफ ने देखा आसपास ऐसे मोबाइल रखा हुआ था, और गुस्से में तो कंट्रोल नहीं रहता, उसने मोबाइल उठाया और हस्बैंड की तरफ फेंक करके मारा। वो हस्बैंड वाज क्वाइट अलर्ट, उसने मारा तो उसने उसे कैच कर लिया, गिरने नहीं दिया मोबाइल को। फिर उसका गुस्सा और थोड़ा बड़ा, कह रहे मैं पूछ रहे हूँ ये बात, तुम जवाब नहीं दे रहे। तब मोबाइल तो कैच कर लिया था, तब हस्बैंड ने बोला इनकमिंग फ्री, मोबाइल था ना, मोबाइल में क्या होता है, इनकमिंग तो फ्री होता ही है। तो इस बात को थी साधारण सी बात, लेकिन उस सिचुएशन को डाइल्यूट कर दिया, आपस में जो मन भेद हो रहा था, क्रोध झगड़े की बात, और उसे डाइल्यूट कर दिया, और बस दोनों हंस पड़े, और इस तरह परिवार में सिचुएशन डाइल्यूट हो गई। यही हमारा लाइफ में एम रहना चाहिए, कि परिवार के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी, तो हम उसे जबरदस्ती, एक बोले दूसरा उससे तेज बोले, फिर पहले वाला और तेज, हम दूसरे की सुनते नहीं है ना, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम होती है। और इसलिए सुनना ये बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ पर ना, देखो कान से ना सुना जाता है, जब कोई भी बात सुनी जाती है तब पता चलता है क्यों, क्या, कैसे, कब, क्वेश्चन मार्क। अब देख रहे कान की, हाँ कान की ब्यूटी क्या है, कान की शेप ही है क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन मार्क होता है ना। अब कान की बेचारे की शेप ही ऐसी है, तो उसके अंदर जो आवाज जाएगी क्वेश्चन पैदा करेगी, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना, वो उसको सुने, इसने सुनने की कला, पावर ऑफ लिसनिंग, मैनेजमेंट में ये बात बताई जाती है, इट इज वन ऑफ द बिग आर्ट, सुनने की कला। अगर आप अपने जूनियर से, अपने सबऑर्डिनेट का कोई प्रॉब्लम है, आपने उसकी बात सुन भी ली ना, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसीलिए भगवान ने देखो कान को कोई कवर नहीं दिया है। अगर हम मुंह से न बोलना चाहें, तो जीभ के ऊपर ये 32 दांत दिए और उनके ऊपर ये मास्टर लिप्स, न बोलना चाहें लिप्स बंद कर लें। अगर न देखना चाहें हम हैं, हाँ लगे हुए हैं, अब आंख से न देखना चाहें आंख बंद कर लें, लेकिन कान से न सुनना चाहें तो कोई कवर वगैरह दिया है भगवान ने नहीं, सुनना ही है। इसीलिए जब सुनना ही है तो क्यों ना दूसरा जब बोल रहा है उसको शांति से सुन करके उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर आए। इसीलिए ये सुनने की शक्ति, पावर ऑफ लिसनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट विच इज टॉट इन द मैनेजमेंट, और ये आवश्यक है, ये इसको हम सुनने की के साथ साथ इस पर हम आगे। तो यहाँ पर यही बताया गया, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन, इसलिए कहा गया है साइलेंस इज द क्लाइमेक्स ऑफ स्पीच। स्पीच होती है उसमें बीच में साइलेंस होती है, इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ स्पीच दैट इज साइलेंस। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है साइलेंस की। ये कहानी तो बचपन की, ये सब हम लोगों ने सुनी है। हा? शेर जाल में फंस गया, शेर ने पहले कभी एक चूहे को बचाया था, रक्षा की थी तो चूहा आया, उसने कहा अरे मैं जाल काट देता हूँ, बचपन की कहानी है। जाल काट दिया, शेर बाहर आ गया, फ्री हो गया। तो इस कहानी से, सिंपल कहानी से क्या शिक्षा मिली? हा? क्या शिक्षा मिली इससे? है मतलब किसी को भी हम ना छोटा ना समझे, हरेक को, हरेक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हरेक समय पर काम आ सकता है, किसी को भी हम निग्लेक्ट, क्योंकि जहां किसी को निग्लेक्ट किया, उपेक्षा की जैसे आपको बताया था ना, तो उस जगह उसकी फीलिंग हर्ट होती है। इस कारण से छोटे से छोटा हो बड़े से, नाइदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नॉर इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हरेक को समान दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, ये जीवन में ना बहुत बहुत हाइट्स तक ले जाता है। सिचुएशन चेंज होती रहती है, कभी हम एक जगह पार्ट बजाते हैं, कभी दूसरा। इस रीति से हम नेवर अंडरमाइन द वन हु लुक्स वीक एंड लेस एफिशिएंट, दिस इज द मैसेज। और ये जीवन भी ना एक पतंग की तरह है, पतंग उड़ाते हैं ना। हा? आप में से कुछ गुजरात में से भी आए होंगे, स्पेशली मेरी भी पोस्टिंग जब गुजरात में थी, अहमदाबाद में देखा, हाँ उत्तरायण 14 जनवरी उस समय बहुत बहुत आसमान पूरा पतंगों से भर जाता है। लेकिन पतंग कब ऊपर जाती है? हाँ सब कुछ है, पतंग है और धागा है, मांझा, कभी कभी ऊपर नहीं जाती। क्यों? हवा नहीं होती है। हाँ हवा, कई बार बहुत तेज हवा होती है, पतंग उड़ाने का भी मजा होता है, बहुत ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती है। तो जीवन भी एक पतंग है, और अगर कोई तूफान, हवा, थपेड़े लगते हैं तो ये समझना चाहिए क्या, तूफान को तोहफा समझो। प्रॉब्लम, समस्या आती है, तूफान आते हैं, उनको तोहफा समझ करके जीवन में हम आगे बढ़ते चलेंगे, तो ये हमारे जीवन रूपी पतंग को और ऊपर ले जाएंगे। इसीलिए इसमें कभी भी घबराना, प्रॉब्लम आती हैं लाइफ के अंदर, सिचुएशंस को हमें ऐसी तरफ ले जाने के लिए जहां पर अल्टीमेटली इट विल बी विक्ट्री। इसीलिए कहने का भाव ये है, लाइफ में भी है, सब अभी आप यहां पर आए हैं, ऑलवेज हैव बिग थॉट्स इवन वाइल एंजॉइंग स्मॉल प्लेजर्स। अब देखिए ये जो व्यक्ति है ना, चला तो रहा है साइकिल, और साइकिल में के साथ साथ ना अब थॉट्स इसके ऊंचे हैं। देखिएगा ये साइकिल है, अब चला रहा है साइकिल, सोच रहा है मैं तो जैसे BMW कार कर चला रहा हूँ, एंजॉइंग, मतलब यू पांच उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन जो भी सिचुएशन है, यू थॉट्स तो चलाने आपके अपने कंट्रोल में है ना, विचार, तो विचारों में महानता लाइए। जैसे यहाँ पर भी बताया जाता है कि यहाँ का इस इंस्टीट्यूशन का लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना, यानी कि मनुष्य से देवता, इतना हाई थॉट दिया है। तो जब हाई थॉट्स होते हैं ना, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, हमारे यहाँ कहते थॉट अगर महान होगा, आपका लक्षण भी महान होते चले जाएंगे। इसीलिए थॉट्स को कभी भी, अपने विचारों को कभी भी नीचे, कमजोर श्रेणी में लाने का प्रयास न करें। क्या करूं, कैसे करूं, ये नहीं कर सकती हूं, ये नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, केवल हमारे सोचने की क्षमता हमारी अगर इतनी महान हो। और इसलिए क्या होता है कि हमारी जो शक्तियां हैं ना, उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर करते चलेंगे तो बिल्कुल ठीक रहे। जब से हम पैदा होते हैं, हम सब के पास दो शक्तियां विशेष होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति और दूसरी है भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां हम सब पर विशेष होती हैं, सबके पास है। लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की? क्या ट्रेजेडी है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो जाते हैं भूल, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। दैट इज द ट्रेजर। शक्ति है लेकिन हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना नहीं जानते। मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है राइट मैन एट द राइट जॉब। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टूल, राइट टूल फॉर द राइट वर्क। लेकिन यही है, दोनों शक्तियां हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते। किसी ने हमारा अपमान किया है या कोई बात है, करी है कभी कोई बात, बस वो व्यक्ति सामने आते है, उसकी पुरानी बात को याद आते ही हमारे मन के अंदर वही पुरानी बात आने लगती है और हम अरे अंदर अपमान की, घृणा की भावना, बदले की भावना वो आने लगती है। वो तो जानी चाहिए भूल, वो नहीं भूलती, वो याद आती रहती है। और जो याद रहने वाली बात है और जो इम्पोर्टेंट बात है डे टू डे एक्टिविटी की, वो कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो भूलने की शक्ति महान किस लिए? क्योंकि कोई बात को अगर हमारे भूलने की शक्ति है हम में, ये है क्षमा की शक्ति। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। वो पुरानी बातें जिससे मन भेद है, मतभेद है, बार बार याद आती रहेगी, उसका अंदर ही अंदर बदले की भावना, अपमान करने की भावना वो याद आती रहेगी। तो आज आप इंट्रोस्पेक्शन करिएगा, ऐसा कोई है आपका संबंधी, मित्र, जानकार, जिसके द्वारा कभी आपका क्लैश हुआ हो और अभी तक वो आपको बात कष्ट प्रदान कर रही हो। जैनियों में बड़ा अच्छा त्योहार है, यहाँ पर भी हो सकता है कोई जैनी बैठे होंगे। कोई जैन है? हाथ खड़ा करे। वेरी गुड। मिच्छामी दुगड़म यही बोलते हैं ना। साल में एक बार त्योहार आता है एक दूसरे से क्षमा याचना करने का, ओपनली वो लेटर लिखते, जैसे हम नए वर्ष में ग्रीटिंग्स वगैरह लिखते हैं उसमें, वो खास भाई इस वर्ष जो कुछ भी बीता है, अगर मैंने आपको कुछ गलत बोला है या अपमान किया कोई बात, आप मुझे माफ कर दें। मतलब वो फीलिंग ये होती है, भले अंदर से माफ कर पाए न कर पाए, भूल पाए नहीं, लेकिन स्प्रिट इस त्योहार की यही है, मिच्छा में दुगड़ा, यानी दूसरे को क्षमा कर ले। तो एक ये बात है लाइफ में, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये इट इज ए वायरस इन द कंप्यूटर, क्योंकि जब तक ये रहेगा हमारी थिंकिंग भी पॉजिटिव नहीं होगी, एटीट्यूड भी नहीं होगा पॉजिटिव, और हमेशा उस व्यक्ति के प्रति हमारी इल फीलिंग रहेगी। इसलिए आवश्यकता यही है कि हम इन दोनों शक्तियों को प्रॉपर वे में जान करके सही रीति से सही यूज करें। और जब ये यूज करना आ जाता है तो फिर जीवन में खुशियां आने लगती हैं। व्यक्ति आगे है, ये इसमें देखा ना, वो फूल लेके है। हाँ, मुन्ना भाई वाला भी फूल था ना एक। हाँ, तो लगे रहो मुन्ना भाई, उसी में ही था ये। हाँ, भाव क्या है कि ये, और ये फूल जो है प्रेम का, स्नेह का, मीठापन का प्रतीक है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। गौर से सुनिएगा, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन के अंदर जीतने पर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन ऐसी मेंटल स्टेज हो जाए, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, हमारी मानसिक स्थिति एक जैसी है, और उसमें भी मुस्कुराना, क्योंकि कोई भी हार होती है परमानेंट नहीं होती, इट इज ओनली ए फेज। उस हार से सबक लेके हम आगे बढ़ेंगे, फिर जीत आ जाएगी जीवन में। तो हर परिस्थिति में हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज हर एक की लाइफ में आती हैं। आपकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आई है, आप जो आबू में आए हैं ना, डोंट थिंक इट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें नॉमिनेट किया है इसलिए हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं। नहीं, वो तो एक एस्पेक्ट है ही है, लेकिन ये आपको एक लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ये एक मिली है कि कैसे आप अपने को एक नई थिंकिंग में आप डाइवर्ट कर सके। जैसे कल भी बताया जा रहा था रिसाइकलिंग प्लांट होता है ना, तो कैसे हम सब चाहते हैं कि निगेटिव थिंकिंग ना हो, नकारात्मक ना हो, लेकिन हो जाती है, क्या करें। तो इसीलिए निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिसाइकिल करना ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। कोई भी चीज हो उसमें से हम पॉजिटिविटी ड्राइव। अब देखिए ये जो कुत्ता है ना, अब पता नहीं कुत्ता जैसा लग रहा है या क्या लग रहा है, लेकिन खुर्राटे भर रहा है, सो रहा है, हाँ ऐसा। तो यूजुअली नॉर्मल केस में बिल्ली जो है डरती है कुत्ते से, और तो देखा बिल्ली ने कि ये कुत्ता सो रहा है, तो चुपके से आई और उसका खाना वाना जो रखा था खाया, चल गई। अपॉर्चुनिटी को उसने एनकैश कर दिया। तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ आने की एक मौका मिला है ब्रह्मा कुमारी संस्था में यहाँ पर, तो यहाँ जो भी लेक्चर आपके होंगे आप ये समझिए कि ये एक जीवन के लिए एक अनमोल लेक्चर है, नई दिशा देने के लिए। आप उसे ट्रेनिंग मॉड्यूल का ही एक पार्ट ना समझिए, वो तो होते हैं, बहुत ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये जो है आपके जीवन के, आपके परिवार के सदस्यों के हर चीज की दिशा एक खुशनुमा दिशा की तरफ ले जाने की सामर्थ्य रखती है। तो इसीलिए ये सब अब जीवन में है, कई बार है, टेक टाइम टू थिंक। हम सब फिजिकल एस्पेक्ट भी है, शरीर भी चाहते हैं तंदुरुस्त रहे, इसलिए आजकल बड़े प्राणायाम आसन वगैरह होते हैं, रामदेव जी भी टीवी पर आते हैं, कई प्रकार के प्राणायाम वगैरह सिखाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कहते हैं नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। सुनिए और उसको राइटली इम्प्लीमेंट कीजिए। अब ये शीर्षासन कराना सिखा रहे हैं, अब व्यक्ति देख रहा है बस रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ वहीं शीर्षासन करने लगेगा तो क्या होगा, हा? रिवॉल्विंग चेयर है, व्हील लगी हुई है। तो इसीलिए आवश्यकता ये है कि हर चीज को डोंट इमीडिएटली रिएक्ट, थिंक सी एंड देन रिएक्ट। कोई भी चीज में रिएक्शन में थोड़ा टाइम लीजिए। इमीडिएटली क्रोध यही है, सोच अगर आदमी पहले सोचता है जीवन में सफलता होती है, और पहले कर्म कर लेता है और बाद में सोचता है तो पश्चाताप होता है। एकदम आपने कर्म कर लिया, सोचा नहीं क्या उसका आउटकम होगा, और कर लिया उसे फिर बाद में सोचना पड़ता है पश्चाताप के रूप में। इसीलिए पश्चाताप ज्यादा करना अच्छा है या सफलता पाना अच्छा है, सभी कहेंगे जीवन में सफलता ही पाना। इसीलिए सोचने को आप प्रधानता दीजिए, कर्म को, कर्म भी करना है लेकिन पहले सोचने, और ये सोचने की शक्ति मेडिटेशन के साथ साथ डायरेक्टली लिंक है। आजकल हर एक कोई एंटरटेनमेंट चाहता है, टीवी में भी एंटरटेनमेंट होता है, वनडे मैच जब होता है ना क्रिकेट का 50 ओवर्स का या 20 ओवर्स कितना, ऐसी एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल 50-50 ओवर, ऑफिस से छुट्टी ली एक ने और भाई आज ये मैच देखेंगे, बहुत घर में सारा टीवी के सामने बैठ गया, स्मोकिंग कर रहा है और मैच शुरू हुआ, देखने लगा मैच एक आदमी, मैच देखते देखते थोड़ा 2-4-5 ओवर हुए, उसकी मिसिज आई, छोटा बच्चा गोदी में था, मुंह में बॉटल दूध की लगी हुई थी, उसने कहा भाई ये इस बच्चे को ये बॉटल से दूध भी पिलाते रहो, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, नो ऑब्जेक्शन, अपना गोदी बच्चे को लिया और बच्चा दूध पीता रहा, वो अपना स्मोकिंग करता हुआ पैर वैर फैलाए आराम से मैच देख रहा है। थोड़ी देर में बच्चा सो गया, बच्चा जब सो गया तो उसने बच्चे को उठा के चारपाई पर नियर बाय पलंग के पास रख दिया और मैच देख रहा है। 10-20-30-40-45 ओवर हो गए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज में मैच पहुंच गया, कोई भी जीत सकता है, इधर प्लेयर भी 6-7 आउट हो गए, दूसरी तरफ बॉलिंग भी अपनी पीक पर है, और बस बहुत पूरा उसका मन मैच में लगा हुआ। इतनी देर में बच्चा रोने लगा, थोड़ा बच्चे को थपथपाया, भाई चुप हो जा, क्योंकि सारा दिमाग तो मैच में ही था, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा। अब क्या करे है, जल्दी जल्दी बच्चे को उठाया, क्योंकि माइंड उधर है और इधर ये बच्चा थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो बच्चे को उठाया और देखा तो जल्दी में देखो बॉटल तो अपने मुंह में लगा रही और सिगरेट बच्चे के मुंह में लगा दी। देख रहे हैं, ये है जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है माइंड की ना, तो आदमी बस उस वक्त ठीक काम नहीं, जहां पर वो होता है, जैसे अभी आप हंस रहे हैं, ऐसे ही जब हमें भी स्ट्रेस आता है ना, भले दूसरे कोई सहानुभूति दिखाए, लेकिन काफी मेजोरिटी ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर खुश होते हैं, हंसते हैं। अच्छा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है दूसरे को थोड़ा डाउन करने की और उसका डिग्निटी रेज ना हो आदि आदि। तो देखो इसने जल्दी में टेंस मोमेंट है, तो ऐसी टेंसफुल सिचुएशन में हम दूसरे के लिए एक हंसी का साधन जैसे एक क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए यहां पर मेडिटेशन के द्वारा आपको ये बताया जाएगा, पहले तो टेंसफुल सिचुएशन आए ही नहीं, आप उसे ऐसा हैंडल करेंगे कि टेंशन क्रिएट ही ना हो। लेकिन फिर भी अगर टेंशन जीवन में आ जाता है, तनाव आ जाता है, तो उसको हैंडल करने की बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां हैं, वो भी आपको इन दो तीन दिन के अंदर ये बताई जाएंगे कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, जिससे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अक्सर करके ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ये बात आ जाती है, सिचुएशन जो सिचुएशन, ये विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। क्रोध, आपने किसी को जॉब असाइन किया, जॉब नहीं हुआ है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आपका सोशल स्टेटस डाउन होने की संभावना है, तो नेचुरली क्रोध आएगा। और जब क्रोध अगर आता है तो क्रोध में क्या होता है, या तो आदमी क्रोध को उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करता है या क्विट कर जाता है। तो इसमें देखिए, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीवन में कभी भी जीवन रूपी खेल में से ना बाहर निकलने का मत सोचिए। यानी जीवन रूपी खेल है ये, और ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सबकी, तो विनर्स नेवर क्विट वो नहीं है। हाँ, आज कोई सिचुएशन है और क्विटर्स नेवर विन, जो जीवन रूपी खेल से बाहर निकल जाते हैं ना, दे नेवर विन इन लाइफ। कई बार हम होता है मूड ऑफ है, एकांत में बैठ जाते हैं, काम करने की दिल नहीं होगी, नहीं करेंगे, तो ये क्विटर्स जो होते हैं ये जीवन में कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट। आप उस सिचुएशन को इस रीति से ही देखिए, आज ये परिस्थिति है, हम सब खेल खेल रहे हैं इस सृष्टि रूपी नाटक में, आज उसका ये पार्ट है, लेकिन एक जैसा सीन तो कभी रहता ही नहीं, संसार का नियम है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, मौसम गर्मी सर्दी बरसात मौसम होगा, दुख सुख सारा हर चीज बदलती है। तो इसीलिए इस परिस्थिति को ये बदल, आज कोई एडवर्स सिचुएशन लाइफ में आई है, दैट विल ऑल्सो गो पास अवे। इसीलिए निगोशिएशन हमेशा ये रखिए, गिव एंड टेक बिजनेस। कभी भी ये नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा वी विल नॉट लाइक टू टॉक, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा हम डरेंगे। तो भाव क्या है, अब देखिए बिल्ली और चूहा है, ये कभी वैसे दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन जैसे यहां निगोशिएशन करते हुए दिखाए गए। तो निगोशिएशन माने कभी भी कोई चीज है ना, कोई भी बात है, आप हमेशा ऐसे लेवल से उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लेकिन होता क्या है, जब भी कहीं पर कोई हमारा मन भेद होता है तो फर्स्ट कैजुअल्टी ये टॉक्स हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, हम दूसरी पार्टी से बोलना बंद कर देते हैं। बस ये ही सारी समस्याओं की जड़ है। कभी भी अपना कम्युनिकेशन लेवल को ब्रेक डाउन नहीं होने दीजिए। दूसरा नहीं बोलता ईगो की, आप थोड़ा वो करके हेलो हाउ आर यू भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई, थोड़ा सा करके आप एक बार दो बार आइस ब्रेक करेंगे, आप देखेंगे कि दूसरा भी आपको आगे बढ़ करके ना वो सामने आएगा. इसलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट अवर कम्युनिकेशन ऑलवेज मस्ट रिमेन दिस निगोशिएशन. दिस इज ऑल्सो एट द प्रोफेशनल लेवल, नॉट ओनली प्रोफेशनल बट इन अवर डोमेस्टिक लेवल, ये भी एक जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज है. इसलिए कभी भी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं होने दीजिए, यह जीवन की एक बहुत बड़ी बात है. साथ ही साथ कभी भी कोई समस्या आती है ना, समस्या एक आएगी लेकिन उसके चार रास्ते ऑलरेडी होंगे. सिंपली देखना यह है कि कौन सा रास्ता हमें सूट करता है. एक आदमी जंगल में जा रहा था, जंगल में जाते जाते उसे भालू मिला. अब वो क्या करे, फिर उल्टा लौटा वो, तो उधर से भालू पीछा करने लगा, आगे दौड़ता जा रहा है तो खाई है. अब खाई आगे मिली, अब क्या करे, खाई काफी चौड़ी प्रतीत होती है, कैसे मैं जंप करूं. सोच ही रहा है कि एक जंप में पार करूं या दो जंप में, तीन जंप में करूं. दो तीन जंप में पार कर सकता है खाई को? नहीं. यानी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें विद फुल हार्ट एंड माइंड उसे हैंडल करना है. और ये तभी हो सकेगा जब हमारा बॉडी के साथ साथ हमारी स्पिरिट, सोल, कॉन्शियसनेस वो एम्पावर्ड हो. और वो एम्पावर्ड होगी, शक्तिशाली होगी, तो हम कोई भी सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं. इसीलिए आवश्यकता इस बात की है, दोनों जो पहलू हैं जीवन के उनको हम ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार करके रखें. और जीवन में हर्डल्स तो आएंगी आएंगी, आगे आते रहेंगे, तो क्या करें. यहाँ से अभी आप आए हैं और वापस जाएंगे, सपोज कोई ब्रिज आया टूट गया, तो इसमें ये बताया गया है जब यहाँ से आप जाएं तो सब फ्लाइट से जाइएगा, कोई ट्रेन से या बस से नहीं जाइएगा. अलग अलग अभी आए होंगे, इसका भाव क्या है, व्हाट दिस पिक्चर रिफ्लेक्ट्स. ये जीवन में ना, यहाँ जो आए हैं, जो लेक्चर हो रहे हैं, आपको दो विंग्स मिल रहे हैं, दो पंख मिल रहे हैं, जैसे चिड़िया पक्षी उड़ते हैं, ये आपको दो पंख मिल रहे हैं ज्ञान और योग के. तो ये ज्ञान और योग के दो पंख हैं, इनसे आत्मा रूपी पंछी को उड़ना सिखाइए. एंड जब ये उड़ना सीख जाएगी उमंग उल्लास को धारण करके, तो कोई भी हर्डल नीचे होगी ना, प्रॉब्लम नीचे होगी, उसको हम सहज ही पार कर सकते हैं. तो फ्लाई. और इसलिए इसके लिए ये आवश्यक है जीवन के अंदर ये दोनों. इसीलिए यहाँ बताया जाता है, आप यहाँ पर जो है ना डायरी पेन भी दिया गया है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो नोट करें. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीन चार दिन आप हैं, लेकिन व्हेन यू गो बैक, तो अपने अपने कार्यस्थल पर, परिवार में जब जाएंगे, तो वहां पर अगेन फिर ऐसी समस्याएं आएंगी और वहां पर आपका मूड जो है ना कई बार ऑफ हो सकता है. ऐसे में क्या करेंगे, इसके लिए ये डायरी दी गई है कि यहाँ पर आप कुछ पॉइंट नोट करके ले जाएंगे. यहाँ से जब आप जाए, कुछ ऑडियो कैसेट ले जाइए, कोई वीडियो कैसेट ले जाइए, ये शिविर जो होते हैं ये सब प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स अवेलेबल है. और ये जितना जो लेक्चर है ना, ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये आपको सब लास्ट डे अवेलेबल हो जाएंगे. तो जब कभी आपका थोड़ा मूड ऑफ हो, जैसा इसमें ये ऊपर की तरफ दिखाया भी गया है ना, तो कभी ऐसा हो, उसको फिर अपना हैप्पी मूड में लाने के लिए क्या करिए, ये वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, ये जो है आप ले जाएंगे. अगेन यू विल कम बैक टू दिस हैप्पी मूड, और फिर जीवन में वही खुशी का संचार. क्योंकि इसमें ऐसी टेक्निक, ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपको जीवन में फिर से खुशी में, आनंद में, शक्तिशाली स्टेज के अंदर वो ले आएंगे. इसलिए अभी बस वी आर टूवर्ड्स द एंड. रात को जैसे सारे दिन भर काम करते हैं, रात को सोने जाते हैं, तो बस रात को जब अगर एक बड़ी सेटिस्फेक्ट्री स्लीप है ना रात को, तो क्या अगले दिन आदमी भी जब उठता है सो के, बड़ा फ्रेश उठता है और फिर अच्छी तरह काम कर सकता है. उसके लिए जरूरत क्या है कि आप सोने से पहले बिल्कुल ऐसी स्टेज में सोइए, बड़ी क्वालिटेटिव स्लीप आपकी हो. वो कब होगा, इसमें यह बताया गया ना, खोपड़ी का ये ढक्कन खोल करके दिन भर के जो विचार है, व्यर्थ वेस्ट थॉट्स हैं, इरिटेशन वाले थॉट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले थॉट्स हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुई है, कटुता आई है, उन सब थॉट्स को डस्टबिन में डाल करके फिर आप सोने चाहिए। फिजिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई घोपड़ी का ढक्कन हो और खोल सके, हा? लेकिन इसका भाव क्या है कि रात को सोने से पहले ना कुछ मिनट मेडिटेशन करके सोएंगे ये चीज, और अपने को डिटैच करके सोइए। हे प्रभु, मेरा ये शरीर इस बिस्तर पर आराम कर रहा है और मैं आत्मा आपके पास आके आराम कर रहा हूं, डिटैच। और जितना डिटैच हो जाएंगे ना, यू विल फील सो कंफर्टेबल, गेट ए वेरी नाइस स्लीप, क्वालिटी स्लीप, कम घंटे में ही बहुत फ्रेशनेस का अनुभव हो जाएगा। तो इसीलिए ये कैसे करेंगे आप ये स्लीप के लिए, इससे आपकी मेंटल फैकल्टी भी बिल्कुल अपडेटेड रहेगी और पीसफुल रहेगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी और बस अगले दिन जब सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश। तो ये जैसे एयर कंडीशन रूम में गर्मी से आप आ रहे हैं, एयर कंडीशन रूम है, टेम्परेचर डाउन है, तो कितना कंफर्टेबल महसूस होता है। ऐसे अपने को डिटैच कर लीजिए थोड़ा सा कि मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हूं। वो भी टेक्निक आपको यहां पर मेडिटेशन में जब आठ शक्तियां बताई जाएंगी ना, उसमें बताई जाएंगी। और इसीलिए जाने से पहले यहां पर आप एक अपने लिए एक एक्सरसाइज करके जाइएगा। ये आप देख रहे हैं, ये चेन और एक ताला है। आज आपको यहां पर बताया गया होगा ना, आत्मा में ये गुण हैं। भाई आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, गुण हैं, वो खजाने हैं हमारे पास, ताला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें महसूस नहीं होता। कहने को आता भाई आप शांति स्वरूप हो, लेकिन शांति की अनुभूति कम, अशांति की प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा होती है। ये अनुभव होता है आप प्रेम स्वरूप हो, प्रेम का अनुभव कम, घृणा ईर्ष्या का ज्यादा अनुभव हो जाता है। लाइक दैट निगेटिविटी का ज्यादा अनुभव होता है, पॉजिटिविटी का कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन के खजाने हैं, गुण शक्तियां, ये जिस ट्रेजर को हमने लॉक में रखा हुआ है अंदर, उसकी ये जो लिंक है ना, ये आप देख रहे हैं एक टूटी हुई है ये। और अब आपको अपनी लिंक को एस्टेब्लिश करना है, मेरी कौन सी लिंक ब्रोकन है और किस लिए ये खजाने लीक आउट हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन ये बताएगा। कोई कहेगा तो मुझ में क्रोध है, क्रोध की वजह से मेरी खुशी गायब हो जाती है। कोई कहेगा मुझ में ईर्ष्या है, ईर्ष्या की वजह से ये चला जाता है। कोई कहेगा मुझ में अहंकार है। कोई कहेगा दूसरे के लिए नहीं, आप अपने को ही इंट्रोस्पेक्शन करिएगा और अपने को जो वीकनेस आपको लगता है मेरे अंदर ये है, उसको एक कागज के टुकड़े पर लिखिएगा। बस हे प्रभु, आज मैं अपना ये कमजोरी का दान आपको यहां पर देकर जा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। भले नाम लिखे ना लिखे, लेकिन एक सच्चे दिल से भाई मेरे में ये क्रोध है, ये क्रोध का मैं दान दे रहा हूं, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि आगे से मैं क्रोध से बच सकूं। आप देखोगे हमारे पास इतने जो आते हैं जो चेन स्मोकर, जीवन भर चेन स्मोक, एक सिगरेट से ही दूसरी सिगरेट जलाते रहे, 20-20 पैकेट एक दिन में पी जाते थे, यहां पर आके उन्होंने सच्चे दिल से ये अपना छोड़ा। आज तक भी उनके लेटर आते हैं, उस दिन के बाद से उन्होंने इतनी शक्ति की महसूसता करी कि बस पिया। केवल कंडीशन यही है, आप जो भी छोड़ के जाए ना, उसको फर्स्ट जो 3 वीक्स हैं, 3 हफ्ते 21 दिन तक, उस पर थोड़ा स्टिक रहना, बस नहीं। कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो आपको फिर कमजोरी की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगी, आप उसको कर देंगे जीवन भर के लिए, उस कमजोरी से आप छूट जाएंगे। और ये आज का अंतिम स्लाइड है, अभी अभी पास हुआ है ना, कौन सा, गणपति बापा मौर्य, ये पास ही हुआ है अभी, बस गणेश जी की तरह है। तो हम सभी भी विघ्नहर्ता है, जीवन के जो विघ्न है, तो बस एक गणेश जी का बड़ा सिर जो है, बड़े विचारों का प्रतीक है। आज ये संकल्प करके जाइए मुझे बड़े और महान पॉजिटिव विचार ही करने हैं। गणेश जी का बड़े बड़े कान जो है ना, वो सुनने की शक्ति का, नए विचारों का प्रतीक है। तो ऑलवेज बी रेडी फॉर न्यू आइडियाज। जहां यहां पर भी आपको काफी नई आइडिया मिलेंगे जो आपके एस्टेब्लिश्ड आइडियाज से भिन्न होंगे, लेकिन डोंट डिस्कार्ड देम एट ऑल। नए आइडियाज हैं, उनको देखिए, अनुभव करिए और फिर एनालाइज करके कोशिश करिए जीवन में किस तरीके से। छोटी आंख इस बात का प्रतीक है कर्मयोग। जब व्यक्ति योग भी करता है, कर्म भी करता है ना, तो क्या होता है, आंख बंद होने लगती है। घर में आरती करो, पूजा करो, आंख बंद होने लगती है ना। अब आंख बंद करके तो सारा दिन काम नहीं कर सकते, इसीलिए छोटी आंख अथ खुली आंख इस बात का प्रतीक है। आप कर्म भी करिए, योग का भी। ये बड़ा इजी है, इसमें काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अलोंग विद दैट अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वेव्स जो होती है ना, उनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेडिटेशन के अंदर आता है। लंबी नाक इस बात का प्रतीक है कि हर बात को ना हम जो सुने देखें उसे जीवन में धारण करने का अभ्यास करें। नाक श्वास का प्रतीक है, नाक से सांस लिया जाता है ना, तो ये जितना श्वास की प्रक्रिया आदमी की ठीक होगी उतना जीवन के अंदर वो और आगे खुश। छोटा मुंह इस बात का प्रतीक है कि कम बोलने का। कहते हैं कान दो दिए भगवान ने, मुख एक दिया है, यानी जितना सुने उससे आधा बोले। और बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है डाइजेशन, बातों को हम डाइजेस्ट कर सके, ये पावर ऑफ एडजस्टमेंट। अभी आप जाएंगे ना तो भोजन के लिए, तो जैसे भोजन के डाइजेशन के लिए आवश्यक है पाचन क्रिया, ऐसे ही बातों को डाइजेस्ट कर। और जितना ये होता जाता है उतना व्यक्ति जीवन में आगे। बस यही जीवन की कुछ संक्षिप्त कलाएं हैं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।